प्रत्येक भाई और बहन जन्मजात साधक है। साधक का अर्थ होता है जिसकी कोई जरूरत हो और जिस पर कोई जिम्मेदारी हो। तो हम सबकी जरूरत क्या है और हम सब पर जिम्मेदारी क्या है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सबकी जरूरत है कि हम सबको अविनाशी रस रूप स्वाधीन जीवन मिल जाए। दूसरे शब्दों में कहें फिर शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ये हम सबकी मांग है, जरूरत है। और इस जरूरत की पूर्ति हो सकती है, क्यों? इसमें विशेष कारण यह है कि जिसकी प्राप्ति जरूरत अनुभव करने मात्र से होती है उसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन होते हैं। इसके लिए कोई कर्म अपेक्षित नहीं है, कोई वस्तु अपेक्षित नहीं है, किसी व्यक्ति की सहायता से ये मांग पूरी नहीं होती। ये मांग केवल जरूरत अनुभव करने से पूरी होती है, और जरूरत अनुभव करने में तो न कोई असमर्थ है न कोई पराधीन है। हम सब जरूरत अनुभव कर सकते हैं कि हमको अविनाशी स्वाधीन रसरूप जीवन चाहिए, शांति मुक्ति भक्ति चाहिए, ये हम जरूरत अनुभव कर सकते हैं और ये मिल सकती है। इसमें प्रमाण क्या है? बोले संतों की भक्तों की वाणी इसमें प्रमाण है, वेद वाणी इसमें प्रमाण है, मनुष्य का स्वयं अनुभव इसमें प्रमाण है कि ये अनुभव भी आपको हो सकता है कि हमको हमारी ये मांग पूरी हो सकती है। संत भी कहते हैं ये मांग पूरी हो सकती है, भक्त भी कहते हैं ये मांग पूरी हो सकती है, वेद भी कहते हैं ये मांग पूरी हो सकती है। कौन सी मांग? हम सबको वो जीवन मिल सकता है जो किसी भी संत को भक्त को कभी भी मिला है, वो जीवन हर भाई को हर बहन को मिल सकता है। अगर इस बात में आपका आस्था हो जाए, श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, जिसको उर्दू में कहते हैं हक्कुल यकीन, ऐसा अगर हो जाए तो जीवन का के बहुत से प्रश्न इसी से हल हो सकते हैं कि भाई हमको जो जो शांति जो मुक्ति जो भक्ति कभी भी किसी भी महापुरुष को मिली है वो हम सबको मिल सकती है। तो जीवन में एक गहरा उत्साह पैदा हो सकता है, उत्साह। और जब जीवन में उत्साह पैदा हो जाता है ना, तब फिर वो बड़ी सुगमता से अपने जिम्मेदारी को पूरा कर देता है। तो जिम्मेदारी हम पर क्या है? सत्संग, सत्संग हम पर जिम्मेदारी है। बोले सत्य क्या है, इस पर विचार करें। सत्य का संग ना, बोले सत्य परमात्मा है, सत्य गुरु की वाणी है, सत्य अपना अनुभव है। बोले परमात्मा सत्य है, इसमें प्रमाण क्या है? बोले गुरु की वाणी प्रमाण है इसमें। और अपना अनुभव सत्य क्या है भाई? कि अपना अनुभव ये सत्य है कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ मिला हुआ सा मालूम होता है, वो हमारी जाति का नहीं है, उससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, वो हमारा अपना नहीं है। अगर आज इस बात को आप मान लें कि ये शरीर जो हमें मिला हुआ लगता है इससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, ये हमारी जाति का नहीं है, ये हमारा अपना नहीं है, अगर ये बात जो कि आपके अनुभव से सिद्ध है, जो कि आपके ज्ञान से सिद्ध है, इसको अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप में ममता नहीं रहती, कामना नहीं रहती, तादात्म्य नहीं रहता। ये शब्द कठिन मालूम होते होंगे। ममता का मतलब यह है कि फिर ये बात नहीं रहती कि मेरा कुछ है, ये बात आ जाएगी मेरा कुछ नहीं है। और दूसरी बात बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तीसरी बात मेरा किसी से यानी शरीर और संसार से नित्य संबंध को कहते हैं इससे पर मेरा अधिकार नहीं है। तो अगर आपने इन तीन बातों को अपने अनुसार मान लिया कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है, मेरा संसार पर कोई अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य पालन के लिए सेवा के लिए जो बल मिला है वो संसार की सेवा में लगाना है। देखिए लोग संसार की बुराई करते हैं, वो ठीक नहीं है। संसार बेचारा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, इस माने में बहुत अच्छा है कि जो संसार से संबंध तोड़ देता है, संसार उससे अपनी ओर संबंध कभी नहीं होता। आप देखिए, आप लोगों के किसी के अनुभव में ये बात नहीं आई कि जिस वाणी से मैं बोलता हूँ उस वाणी ने कभी कहा हो मैं आपकी हूँ, जिन कानों से आप सुन रहे हैं उन कानों ने कभी आपसे कहा हो कि मैं आपका हूँ, जिन आंखों से देखते हैं उन आंखों ने कहा हो कि मैं तुम्हारी हूँ, कभी कहा आप लोगों से? कभी नहीं कहा। आप ही कहते हैं मेरी आंखें, मेरी वाणी, मेरे कान, मेरा शरीर, मेरा हाथ। तो संसार अपनी ओर से जिस मकान में आप रहते हैं वो मकान बेचारा कभी नहीं कहता साहब मैं आपका हूँ, कहता है जी? तो जितनी वस्तुएं हैं वे कभी नहीं कहती कि मैं आपकी, हम ही अपनी भूल से उनको अपना मान लेते हैं। अब देखिए ना, संसार विचार के क्या अपराध है। अब आप कहेंगे कि वस्तुएं तो नहीं कहती, व्यक्ति तो कहते हैं, तो व्यक्ति तो माने मानव, मानव माने साधक, तो साधक ही ना भूल करता है, साधक ही ना भूल करता है कि साहब मैं आपका हूँ, अकारणी कहता है मैं आपका हूँ, और जबकि वो जानता है कि मैं नहीं हूँ। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि इसमें आपका अनुभव प्रमाण है, इसमें आपका ज्ञान प्रमाण है इस बात में कि मेरा करके कुछ है नहीं। अब ये बात आप एक बार सुनकर मानो, दो बार सुनकर मानो, दस बार सुनकर मानो, जीवन भर सुनकर मानो, मानना पड़ेगी। हर भाई को, हर बहन को ये बात माननी ही पड़ेगी कि मेरा करके कुछ नहीं है। जब मेरा करके कुछ है ही नहीं, इसमें मुझको चाहिए क्या? आप सोचिए, जब मेरे पास कुछ होता है तभी ना मुझको कुछ चाहिए। अगर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या रह जाता है कि भाई शरीर और संसार में जो एकता है, शरीर और संसार जो स्वरूप से भी एक है, जात से भी एक है, शरीर को आप संसार से कभी अलग नहीं कर सकते, चाहे हिमालय की कंदरा में चले जाएं, चाहे साथ में आसमान पर कुटिया बना लें, पर शरीर संसार की सीमा के बाहर जा ही नहीं सकता। तो जब शरीर संसार की सीमा के बाहर जा ही नहीं सकता, तो शरीर के द्वारा किसी को कभी भी मन से, वाणी से, कर्म से हानि न पहुंचाए, ये बात जरूरी हो गई। आप किसी की सेवा करें ये उतना जरूरी नहीं है, जितनी जरूरी ये बात है कि आप न तो शरीर के द्वारा, न मन के द्वारा, न वाणी के द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों को हानि न पहुंचाए, किसी के लिए अहित कर, हानि कर, नुकसान दे साबित न हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। जब मनुष्य मन वाणी कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तब उसके द्वारा गलत काम कभी नहीं होता है, फिर सही काम होता है, गलत बात कभी नहीं बोल पाता है, सही बात ही होता है, बुरे ख्याल उसमें कभी नहीं उठते हैं, भले ही ख्याल उठते हैं। तो जब मन में भले ख्याल उठने लगेंगे, तन से भला काम होने लगेगा, वाणी से भली वाणी बोलने लगेंगे, तो मन वाणी कर्म के द्वारा ठीक ठीक काम होने से सारा संसार आपका जय जयकार मनाएगा, सारा संसार आपके आपको की जरूरत अनुभव करने लग जाएगा और आप जरूरत से रहित हो जाएंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है, सबसे सुंदर चित्र क्या हो सकता है कि हमें संसार की जरूरत ना हो और संसार को मानव की जरूरत हो, मानव को संसार की जरूरत ना हो, इंसान को संसार की जरूरत ना हो और सही इंसान की संसार को जरूरत रहती है, ऐसा नियम है। तो आप सोचिए कि जिसकी जिसको जरूरत होती है वो उसको प्यारा लगता है, वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सचमुच जो मन वाणी कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाते, अपितु जिनके मन वाणी कर्म से दूसरों की सेवा होने लगती है, दूसरों को आदर मिलने लगता है, उनको ये सराचराचर जगत पसंद कर लेता है, संसार स्वयं पसंद कर लेता है। और जब संसार पसंद कर लेता है तो शरीर की सेवा की जो जिम्मेदारी संसार पर है, जैसे शरीर के द्वारा संसार की सेवा होती है, संसार के द्वारा शरीर की सेवा होती है, इन दोनों में परस्पर एकता है। तो शरीर की सेवा के लिए संसार लालायित रहता है और शरीर संसार की सेवा में लग जाता है। देखने में तो यहाँ तक आया है कि गऊ जो है ना, वो संत के पास अपने आप खड़ी हो जाती और वो पात्र रख देते और बिना हाथ लगाए थनों में से दूध की धारा बहने लगती। ये बात अनुभव में आई है संतों के, वृक्ष फल देने लगते, वृक्ष फल देने लगते हैं। और हम आपको क्या बताएं, जंगली जानवर भी उसको प्यार करने लगते हैं। चराचर जगत का वो प्यारा बन जाता है जो मन वाणी कर्म से संसार को कभी हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि संसार की सेवा में ही जिसका शरीर लगा रहता है, मन में संसार की पीड़ा ही इसके भरी रहती है, वाणी से जो संसार के हित की बात ही बोलता है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो इंसान है, उस इंसान की के शरीर की सारी जरूरत को संसार हमेशा पूरा करता रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि सारा संसार मिलकर शरीर को अमर तो नहीं बना सकता, शरीर कभी नाश ना हो ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो जो बात संसार नहीं कर सकता वो तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जितना कर सकता है वो संसार अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रखता, कुछ कमी नहीं रखता। किसके साथ? कि जिसका शरीर मन वाणी दूसरों के लिए हानि कर नहीं है, नुकसान दे नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा में लगा रहता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई सेवा करो, करना है तो सेवा करो, चाहे गुरु के नाते करो, चाहे प्रभु के नाते करो, चाहे संसार के नाते करो, सेवा करो। और अगर जानना है तो भाई अपने को जानो कि मैं क्या हूं, और अगर मानना है तो भगवान को मानो। ये तीन बातें हर भाई के लिए, हर बहन के लिए बहुत ही जरूरी हैं, अत्यंत आवश्यक है कि भाई करना है तो सेवा करेंगे, जानना है तो अपने को जानेंगे, मानना है तो प्रभु को मानेंगे। सेवा करने वाले के जीवन में बंधन नहीं रहता, अपने को जानने वाले के जीवन में बंधन नहीं रहता, प्रभु को मानने वाले के जीवन में बंधन नहीं रहता। तात्पर्य क्या निकला कि सेवा करने वाला भी मुक्त हो जाता है, जो अपने को जानता है वो भी मुक्त हो जाता है, जो प्रभु को मानता है वो भी मुक्त हो जाता है। और जब मनुष्य मुक्त हो जाता है ना, तब उसमें अपने आप उदारता की और प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे आप देखिए ना, जैसे कोई फल पक जाता है ना, तो उसमें अपने आप मिठास आ जाता है, अपने आप वृक्ष डाल से छूट जाता है, जैसे पका हुआ फल अपने आप में बिल्कुल पूर्ण हो जाता है और वृक्ष की डाल से अपने आप छूट जाता है, उसी प्रकार जो स्वाधीन हो जाता है, जो आजाद हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं रहती, उसके जीवन में अपने आप प्रेम का मिठास आ जाता है, उदारता का मिठास आ जाता है, जो और वो स्वाधीन तो हो ही गया है। तो अब आप सोचिए कि जीवन में जब तीनों बातें आ गई, उदारता आ गई, स्वाधीनता आ गई, प्रेम आ गया, तो फिर बाकी कुछ नहीं रह गया। यही तो साधक का स्वरूप है। साधक का स्वरूप क्या है? जो उदारता से, समता से और प्रेम से परिपूर्ण हो। समता कहो चाहे मुक्ति कहो, उदारता कहो चाहे सेवा कहो, प्रेम कहो चाहे भक्ति कहो, तो उसके जीवन से सेवा होने लगती है और समता में उसका वास रहता है। समता में वास का मतलब क्या कि उसे उसके जीवन में कोई भेद नहीं रह जाता, किसी से भिन्नता नहीं रह जाती, किसी प्रकार की विषमता नहीं रह जाती। क्योंकि विषमता तो हमारी आपकी भूल से ना पैदा होती है, ये बंधन हुआ, विषमता हुई, अशांति हुई, ये सब हमारी भूल से होता है। अगर हम अपनी भूल को निकाल देते हैं अपने जीवन में से, तो न बंधन रहता है, न अशांति रहती है, न विषमता रहती है। तो शांति, स्वाधीनता और समता, ये तीनों चीजें मनुष्य को भूल रहित होने से प्राप्त हो जाती है। अब भूल रहित होने कैसे होते हैं? भूल का ध्यान होने से भूल रहित होते हैं। जब तक हम अपने द्वारा ये अनुभव न करें कि हमारी क्या भूल है, तब तक भूल नाश होती नहीं। तो ये हमको अपने द्वारा अनुभव करना है, क्या किसी भी वस्तु पर मेरा सदा के लिए स्वतंत्र अधिकार है? तो सब भाई कहेंगे, सब बहन कहेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जब ये बात आपके अनुभव से सिद्ध हो गई कि पर्सनल कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, तो फिर मेरा कहाँ कर लगाओगे भाई, मेरा कहाँ लगाओगे, फिर कामना किसकी करोगे? जब अपना कुछ है ही नहीं, तो ना अपने में ममता रहेगी, ना अपने में कामना रहेगी। तो तो ममता का नाश और निर्विकारता की प्राप्ति, ये भाषा आप समझ में आती है क्या? कहने तो नहीं बलभूति जी है? तो ममता का नाश और निर्विकारता की प्राप्ति, ये ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि साहब लैंप को जला दिया, तो दूसरा कहे रोशनी हो गई, और तीसरा कहे अंधकार मिट गया। तो जैसे लैंप के जल जाने से रोशनी हो ही जाती है, अंधकार मिट ही जाता है, जैसे एक ही बात है कि लैंप का जल जाना, रोशनी का हो जाना, अंधकार का मिट जाना, वैसे ही जहां ममता आपने छोड़ दी, ये अपने आप ही छूटती है। आपने आपको अपने द्वारा ये बात करनी होगी कि आप ये निर्णय कर लें, अनुभव कर लें, जान लें इस बात को कि मेरा कुछ है नहीं। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत सच्ची बात है, बहुत सहज बात है। सहज बात तो ये सच्ची जो होती है ना, वो सहज होती है। आप अपना मानो तो अपना हो थोड़ी जाएगा, और अपना न मानने से जब तक शरीर को रहना है तब तक उससे पहले थोड़ी मिट जाएगा। तो किसी वस्तु का जो मिलना होता है ना, और अलग होना जो होता है, वो ईश्वरीय विधान से होता है, कानून से होता है, प्रकृति के विधान से होता है, कानून से होता है। वो आपके चाहने से न कोई चीज मिलती है और न कोई चीज रह सकती है। चीज के रखने में और चीज के पाने में आपका अपना स्वाद, अपनी स्वाधीनता नहीं है। वो तो किसी विधान से मिलती है और किसी विधान से अलग हो जाती है। मिलती है सेवा करने के लिए, अलग हो जाती है आपको निर्मम बनाने के लिए, निर्विकार बनाने के। निर्मम क्यों बनाया जाए, क्यों आपको बनाना चाहता है संसार? इसलिए कि आप निर्विकार हो जाए, आप में लोभ न रहे, आप में मोह न रहे, आप में काम न रहे, आप में अभिमान न रहे, आप में दीनता न रहे, आप में महदूदियत न रहे, विशाल हृदय हो जाए, है विशाल हृदय हो जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे कि अपनी भूल को अपने द्वारा जान लो और छोड़ दो, बस इतनी सी बात है। फिर करना है तो सेवा करो, भूल को छोड़ करके सेवा करो, ये मान करके कि मेरा नहीं है, भगवान का है, गुरु का है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जो आपका इष्ट हो, जिसको आपको प्राप्त करना हो, बोले ये जिस वाणी से बोलता हूँ वो मेरी नहीं है, ये वाणी भगवान की है, ये वाणी गुरु की है, ये वाणी संसार की है, मेरी नहीं है। क्योंकि तीन ही चीजों को आदमी मान के चलता है, संसार को मान के चलता है, अपने गुरु को मान के चलता है, भगवान को मान के चलता है। तो ये जो मेरी वाणी है ये मेरी नहीं है, जब मेरी नहीं है तो संसार की सेवा के लिए गुरु ने दी है, गुरु ने दी है, संसार ने दी है, संसार ने स्वयं अपनी सेवा के लिए ही मुझे शरीर दिया है। तो संसार की दी हुई वस्तु से संसार की सेवा कर दो, और अपना संबंध, अपना नाता रिश्ता भगवान से जोड़ दो। और भाई अथवा अपने को जान लो कि मैं क्या हूं, तो यह का नाम तो मैं हो नहीं सकता, वह का नाम मैं हो नहीं सकता। जिसको आप यह कहते हैं यह वस्त्र, तो आप नहीं कह सकते मैं वस्त्र। जिसको वो कहते हैं वो माने जो अपने से दूर मालूम होता, दुनिया से दूर मालूम होता, उसका नाम भी मैं नहीं हो सकता। उसका नाम है हो सकता है, परमात्मा माने है, संसार माने यह है, तो यह का नाम मैं नहीं, यह का नाम मैं नहीं, तो मैं किसका नाम है? बोले साधक का नाम मैं है। साधक कौन है? जो सत्संगी है। अच्छा, साधक कौन है? जो सत्संगी है। साधक कौन है? जो प्रभु का प्रेमी है। साधक कौन है? जो संसार का सेवक है। साधक कौन है? जो अपने आप में संतुष्ट है, है? जो स्वाधीन है। तो मैं माने स्वाधीन हो सकते हैं, मैं माने प्रेमी के हो सकते हैं, मैं माने सेवक के हो सकते हैं। तो सेवक के जीवन में, स्वाधीन के जीवन में, प्रेमी के जीवन में कभी भी कहीं नीरसता आती है क्या? कह रहे हैं जो सेवा में डूबा हुआ है उसके जीवन में कभी नीरसता आती है क्या? उसमें तो करुणा का, प्रसन्नता का रस बहता रहता है। आप सोचिए, तो सेवक के जीवन में नीरसता नहीं आती, और जो स्वाधीन है, मुक्त है, उसके जीवन में नीरसता नहीं आती, और जो प्रेमी है उसके जीवन में नीरसता नहीं आती। समय में बता दें, न प्रेमी के जीवन में नीरसता आती है, न मुक्त के जीवन में नीरसता आती है, न सेवक के जीवन में नीरसता आती है। और ये तीनों ही बातें इंसान को मिलती है। इंसान ही सेवक होता है, इंसान ही मुक्त होता है, इंसान होता है नहीं प्रेमी होता है। तो आप मैं माने प्रेमी, मैं माने मुक्त, मैं माने सेवक, क्या राय है? ये बात जस्ती आपको ये बात समझ में आती है ना? अजय भाई तो किससे मुक्त? बोले संसार से। बोले किसका सेवक? बोले संसार का। किसका प्रेमी? कि भगवान का। तो भगवान का प्रेमी, संसार का सेवक, मैं मुक्त हूं। क्योंकि मुक्त ही सेवा कर सकता है, मुक्त ही प्रेम कर सकता है। तो इस दृष्टि से आप विचार करके देखें कि आपकी इंसानी जिंदगी बड़ी ही महत्व की जिंदगी है, इसकी बड़ी महिमा है, इसकी इतनी महिमा है कि संसार को सेवक चाहिए कि नहीं, भगवान को प्रेमी चाहिए कि नहीं, बोलिए, और अपने को मुक्ति चाहिए कि नहीं है? तो जो अपने को चाहिए वो भी इस जीवन में मिल सकता है, जो भगवान को चाहिए वो भी इस जीवन में मिल सकता है, जो संसार को चाहिए वो भी जीवन में मिल सकता है, है? वो भी जीवन मिल सकता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जब हमको वो जीवन मिल सकता है, जब हम इतने सुंदर हो सकते हैं कि जैसा संसार को चाहिए, जैसा भगवान को चाहिए, जैसा अपने को चाहिए, है? इतने सुंदर हम सब हो सकते हैं और सत्संग से हो सकते हैं। तो सत्संग का रूप क्या है? अंत में थोड़े शब्दों में कहा जाए, अपने ही ज्ञान से अनुभव करो मेरा कुछ नहीं है, अपने ही द्वारा ये निर्णय करो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने ही द्वारा विश्वास पूर्वक स्वीकार करो प्रभु मेरे अपने हैं। इन तीन बातों, ये तीन बातें जो है ये साधक की दीक्षा है, ये साधक का व्रत है, ये व्रत साधक को लेना चाहिए, हर इंसान को, हर भाई को, हर बहन को ये व्रत लेना चाहिए कि वो अपने ही द्वारा इस बात का ठीक ठीक अनुभव कर ले कि मेरा करके कुछ है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, प्रभु ये केवल मेरे अपने हैं, प्रभु मेरे अपने हैं, अपने ही नहीं अपने में है, अपने में है, अभी है, हाँ, वो मेरे प्यारे अभी है, अपने में है, अपने में है। तो नित्य मिलन, नित्य विरह, क्यों? प्रेम की पूर्ति नहीं होती ना, तो मिलन में भी प्रेम की, प्रेम का प्रभाव बढ़ता ही रहता है और वियोग में भी प्रेम का प्रभाव बढ़ता ही रहता है। तो दोनों ही दशा में जब प्रेम का प्रभाव बढ़ता रहता है, इस प्रेम की व्याख्या क्या? तो
झूठे निकले सहारे संसार के, प्रभु तेरी शरण में आया हार के, झूठे निकले सहारे रखे, प्रभु तेरी शरण में आया हार के, स्वामी तेरी शरण में आया हार के। बेसहारे का तू ही सहारा, तूने शबरी अहलिया को तारा, तूने गिरते हुए को उबारा, तूने गिरते हुए को उबारा, हाथ तूने ही थामे, हाथ तूने ही थामे लाचार के, प्रभु तेरी शरण में आया झूठे निकले सहारे संसार के, प्रभु तेरी शरण में आया हार के, स्वामी तेरी शरण में आया हार के। बंधु मुझको अपना ले, दीन बंधु मुझ को अपना ले, अपने दासों का मुझे दास बना ले, अपने दासों का मुझे दास बना ले। मैंने तेरे लगाए कई द्वार के, प्रभु तेरी शरण में आया हार के, झूठे निकले सहारे संसार के, प्रभु तेरी शरण में आया हार के, स्वामी तेरी शरण में आया हार के।